नमस्ते दोस्तों,
कॉम्सपायर के 15th एपिसोड में मैं अनुपम मिश्रा आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कॉम्सपायर कम्युनिकेट टू इंस्पायर के 15th एपिसोड में आज हम सबके साथ हैं धवन जी।
धवन जी, आपका मैं अनुपम तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
थैंक यू
धवन जी, आज इस मंच पे आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, क्योंकि आपने जो अपने जीवन के इतने सफर तय किए हैं, उस सफर में आपने क्या सीखा है और आप नई पीढ़ी के लिए अपने कौन से अनुभव छोड़ना चाहेंगे? तो आपका सबसे पहला सवाल है, आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की है?
सबसे बड़ी उपलब्धि जो मेरी थी ना, कि वो थी जिसको हम सादी भाषा में बोलते हैं रोटी खाना कि मैं रोटी खा पाया। ये मेरी मतलब इसमें भी फनी टू सम पीपल कि मेरे, क्योंकि जैसे ही मैंने होश संभाला था तो मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न ये आया था कि मैं, हम लोग, हम मतलब जो परिवार के सदस्य थे, कि वो रोटी कहाँ से खाएंगे। कुछ हालात ऐसे बन गए थे तो मैंने ऐसे अपनी मदर को बोला कि भैया अब हम रोटी कैसे खाएंगे
जी।
तो इसलिए मेरे मन में ना पहला जो सवाल दुनियादारी का आया था ना, वो रोटी खाना या रोटी कमाना, या कमाना मेहनत करके कमाना, तो वो था कि आई कुड डू इट। तो एक उसको मतलब कहते हैं ना, भूखा भूखे से पूछे ना, दो चार में वो चार रोटी बोल देता
जी।
ऐसे मेरे मतलब मेरी ऐसी डेवलपमेंट शुरू हुई इस दुनिया में कि भाई सबसे पहला मेरा टारगेट था हाउ टू अर्न माय मील।
जी
तो अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अब मुझे मास्लो थ्योरी भी याद आ रही है
जी।
कि सबसे पहले जो हमारी नेसेसिटीज होती है, तो खैर मैं सबसे पहले मेरे मन में था कि हाउ टू अर्न माई फूड।
जी जी, मैं आपके उस सवाल पे भी आऊंगी कि आपने मनोविज्ञान अभी कैसे चुना, क्यों चुना, पर उससे पहले एक जिज्ञासा है कि आपने ऑलरेडी बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा होगा, तो अपने प्रेरणा स्रोत के बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए।
मैंने जो अपने जीवन को कैसे चलाना है, ये बाई चांस मैं स्कूल डेज में ही ना, मेरे समझ लो मैं 10th 11th में जब था ना
जी जी,
तो उसके आस पास ना बहुत सारी घटनाएं हुई। सबसे पहली घटना इनफेक्ट हुई थी जब मैं शायद 7th स्टैंडर्ड में था, व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, और कोई अर्निंग का वो नहीं था जरिया। तो वहीं से वो लिंक थी वो चीज कि हम रोटी कहाँ से खाएंगे।
जी जी,
वो क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ा उसको डिटेल में बताता हूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई, तो इट वाज आई थिंक लेट इन द नाइट और हम सोए हुए थे, तो हमने रोने धोने की आवाजें सुनी तो मेरी नींद खुल गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, अपनी लोकल मदर टंग में पूछा मदर से, तो मदर थी और कुछ लेडीज और रूम में ऐसे बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। लेकिन आई वॉज अप्रिहेंसिव कि ऐसे मतलब लेट नाइट या वेरी अर्ली आवर्स का टाइम है, तो मुझे लगा कि ऐसे हो रहा है तो कुछ तो है। तो मैंने आंखें बंद कर ली, छोटा था, माननी थी बात पेरेंट्स की, आंखें बंद थी लेकिन दिमाग चलना शुरू हो गया कुछ हुआ है।
जी जी,
तो फिर मैंने ना दिमाग चलाना शुरू किया जो भी था मेरा जितना उस समय चला, तो मुझे बातों से लगा कि मतलब मेरे फादर की ऐसे डेथ हो चुकी है। तो अब मुझे क्या हुआ था, मेरी ना एक सबसे बड़ी सिस्टर थी इसलिए कह रहा हूँ कि मार्च 2020 में उनकी डेथ हो गई है। वैसे मतलब उसमें नेचुरल डेथ हुई है, कोविड से कोई संबंध नहीं। तो वो ना उनकी मैरिज हुई थी जुलाई 67 में
जी,
और मेरे फादर की डेथ थी नवंबर 67 में। तो ना गवर्नमेंट ने अप्लाई थी उस जमाने में, तो मेन अर्निंग वो था, प्लस माय फादर हैड अ टी स्टॉल। तो वो टी स्टॉल मैंने देखा, मतलब मन में सोचा कि भाई फादर की डेथ हो गई तो अब हमारा सोर्स ऑफ इनकम या वही था
जी।
मेरे मन में ना इतना दिमाग नहीं चलता था कि इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते। मेरे मन में आया कि भाई हम खाना खाते हैं
जी
तो पहले सिस्टर थी जब अनमैरिड, तो
जी
शादी अब हो गई है, तो अब कहाँ से खाएंगे खाना।
जी
तो वो जब उन्होंने कहा भाई बेटे सो जाओ, कुछ नहीं हुआ, तो मैं आंखें तो बंद सोचता रहा क्या हुआ। जब मुझे पता लगा, मेरे ब्रेन ने बोला कि फादर की डेथ हो गई है, तो अल्टीमेटली फिर मैंने आंखें भी खोलनी थी। पता
जी
नहीं कितनी देर बाद मैंने आंखें खोली, जो झूठ मूठ की बंद की हुई थी, तो मैं स्टेब्लिश हो गया। तो मैंने पहला सवाल जो था ना मेरे फादर की डेथ के बाद, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अपनी मम्मी से पूछा,
जी
मदर से, वो था कि, अब मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, हम ना अपनी भाषा में मदर को ना भाभी बोलते हैं।
ओके जी
तो मैंने कहा भाभी ऐसी रोटी कितों खावांगे, तो दैट इज माई फर्स्ट। तो वो हालांकि मेरे बड़े ब्रदर, एक बड़ी सिस्टर भी थी, लेकिन वो मेरा प्रश्न था ना, दैट लेड मी टू द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली, समझ लो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड।
ओके
हालांकि मैं 70-71 में उस डेली वेजिस की जॉब स्टार्ट कर दी थी,
जी
तो फिर वहां से मेरी कैरियर का, आपने कहा ना कहाँ से शिक्षा का, तो
जी
क्या प्रश्न क्या था आपका? प्रेरणा,
आपने प्रेरणा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन
हाँ
है? जी
प्रेरणा ये भी, फिर मैं वही स्कूल समझो 11th स्टैंडर्ड में ही मेरी जॉब लग गई थी। इससे पहले मैंने ना वही जब 7th स्टैंडर्ड में था, तो मैं 6th वालों को ट्यूशन पढ़ाने लग गया,
जी
8th में था तो 7th वालों को, ऐसे तब ना ट्यूशन फीस 5 नए पैसे, 5 पैसे का सिक्का होता था। फिर
अच्छा
11th में आया तो मेरी जॉब लग गई। जॉब भी ऐसी लगी कि वो भी मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ ना 18 ईयर्स एज थी, दिल्ली वाटर सप्लाई में डेली वेजेस को जो अपॉइंट, लीगल एज थी 18 ईयर्स।
ओके
और मेरी एज जो थी ना वो थी, आई थिंक इट वाज लेस देन 16 ईयर्स, अराउंड 16 थी, 16 कंप्लीट नहीं। तो मैंने फॉर्मल एक इंटरव्यू होना था, तो मेरे ब्रदर ला जो वही मेरी जो सिस्टर की शादी हुई थी, लीगल
जी
जो मेरे,
जी
उन्होंने अपने ऑफिस में एक डिपार्टमेंट है वहाँ डेली वेजेस पे लगाया। तो वहाँ एक सब असिस्टेंट इंजीनियर है, उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली। तो मुझे ना कहा गया भी तेरे से पूछेंगे ना तेरी एज कितनी, उम्र कितनी है, तू कहीं 17-18 साल।
जी
एक तो मतलब एज मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मोर देन 16, और वो भी ना मैं एग्जैक्ट नहीं, मतलब आज मैं सोचता हूँ, आज का मतलब इन दिनों या उसका 2-4 साल पहले मैंने
जी
सोचा होगा, मैंने कहा यार एक बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब के लिए, और उसको अपनी एज ही नहीं पता। मैं सोच के ना मन ही
जी
मन ना मुस्कुराया कि मेरे से पूछा गया भी उम्र कितनी है, मैंने कहा 17-18 साल। कैन यू बिलीव, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा, उसको अपनी एज ही नहीं मालूम। चलो खैर, तो वो ना वो मुस्कुराए मेरा आंसर सुन के, इंजीनियर साहब। तो आज भी ना मुझे उनकी वो मुस्कुराहट याद है, जो हल्की सी जैसे कहते हैं ना कटाक्ष वाली, या एक
जी
हल्की सी थी भाई, ही न्यू दैट आई एम टेलिंग ए लाई, यू नो, कि
जी
एक तो मैं खुद उतना भी 17 भी नहीं था, और लव मैं एज भी वैसी थी, आई मीन हाइट वगैरह लगता भी नहीं था
जी
उतना भी जितनी थी। चलो तो फिर मैं ना आगे जो प्रश्न पे आता हूँ, मैंने ना फिर एक कोई एग्जीबिशन मैंने देखी जन्माष्टमी वाले दिन, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है एक संस्था,
जी
तो उनकी एग्जीबिशन लगी हुई थी, जन्माष्टमी वाला दिन था, तो वहाँ एक प्रदर्शनी देखी मैंने, तो मैं काफी प्रभावित हुआ। तो मैंने वहाँ उनका एक सेंटर था, वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो तब से लेकर आज तक जो मेरी लाइफ है ना, वो ब्रह्मा कुमारी की, मैं ना कोई ऐसा फॉलोअर नहीं हूँ कि मैंने सारी दुनियादारी छोड़ के उधर, ऐसे समर्पण समर्पित
जी
होते हैं कुछ लोग, भाई बहन
जी
बोलते हैं,
जी
मैं समर्पित नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो ज्वाइन किया, तो लोग मेरा बेस है ना जो लाइफ का, वहां से स्टार्ट हो गया, तो आज भी बरकरार है। आज भी मैं वहां जाता हूँ,
जी
नॉट वेरी रेगुलरली बट आई गो क्वाइट ओकेजनली। तो
जी
वहाँ वो मेरी प्रेरणा का स्रोत जो है ना, वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो
जी
वहाँ क्या सिखाया गया मुझे कि सत्यता पे चलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना। वहां ना प्रैक्टिकल चीजें थी,
जी
हमें ना एक होता है ना, चलो भी हम कीर्तन सुन के आ गए, मतलब मैं उस संस्था का ना वो नहीं कर रहा कि भाई लोग उसमें जाएं या ना जाएं, वैसे
जी जी जी
मतलब जो मुझे अनुभव हुआ कि वहां ना सिखाया जाता था, प्रैक्टिकल अप्रोच लगी, कि मुझे मुझे ऐसा बिहेवियर डेवलप किया गया ये सच्चाई के रास्ते पे चलना है, मेहनत भी करनी है, किसी को दुख नहीं देना, मतलब कुछ नहीं है ऐसे, जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें लिखी होती है ना,
जी
तो कुछ भी नहीं करना। तो वो मेरी सबसे बड़ी जो प्रेरणा है ना
जी
लाइफ में चलने की, वो मुझे वहां से मिली,
जी
ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से। और मैं स्कूल टाइम से वहां जा रहा हूँ, और आज भी मतलब वहां मेरा लिंक है काफी स्ट्रांग। वो लोग जिसको धर्म भी अगर बोल दें, तो मंदिर मैं हर जगह जाने को तैयार हूँ, जाता भी हूँ कहीं भी, क्योंकि वहाँ ये सिखाया गया है कि इंसानियत, मतलब जो हमारा धर्म है ना, वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, जो दुनिया की किताबों में लिखे हुए हैं, वो तो ठीक है, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो मेरा मेन प्रेरणा का स्रोत है। वो सूत्र या स्रोत, मेरे को शब्द ठीक नहीं आ रहा, क्या शब्द है वो?
स्रोत ही
हाँ,
प्रेरणा स्रोत
तो वो है मेरा
जी।
प्रेरणा का स्रोत।
अब मैं उस सवाल पे आऊंगी धवल जी, जो अभी मैं आपने भी बताया कि आप अभी मनोविज्ञान में परास्नातक कर रहे हैं, तो ऑलरेडी रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप ये ख्याल रखते हैं कि आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ये काबिले तारीफ है। और इससे बहुत सारे लोगों को जो सामने बैठे हैं, जो उम्र का तकाजा देकर बताते हैं कि अब तो हमारी उम्र गई, अब हम क्या सीखेंगे, तो उन सबों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। और आपसे पूछूंगी कि आपने कैसे इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा।
मैं सवाल को ना दो तीन टुकड़ों में, दो टुकड़ों में तो बांट ही दूंगा। एक है कि भाई उम्र का जो तकाजा या उम्र की जो बात है, तो
जी
मेरी जो फिलोसफी है या मेरा सोच है, जो मेरे सोच में ना उम्र इज नथिंग।
जी
कुछ लोग जैसे कहते हैं मतलब कि एज इज ए नंबर, वो इशू तो है ही,
नंबर
एज इज नंबर, लेकिन उम्र जो है ना कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि कल मान लो मैं मॉर्निंग वॉक पे गया हूँ, तो आज भी जाऊंगा और आने वाले कल पे भी जाऊंगा। ठीक है, बीमारियां भी आती हैं, उनका अपना रोल है, बीमारियों से लड़ना हमारा काम है, और नेचर है हमारी, कुदरत जो है, एक मेरा विश्वास है कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करना हमारा काम है, कुदरत हमेशा साथ देती है हमारा, ये मेरा विश्वास है। उसको भगवान कह लें,
जी
नेचर कह
बिल्कुल
लें,
सही है
तो हमारा काम है हार्ड वर्क करना। और मेरा ऐसे इस विश्वास के चलता हूँ, जो कल गया है मैंने शहर, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ वॉक का, वॉक करने कल गया था मॉर्निंग वॉक के लिए, आज भी गया, आने वाले कल भी जाऊंगा। ठीक है, मिस भी हो जाते कभी कभी, कभी मेरी सर्जरी हुई है तो 15 दिन नहीं गया, तो ऐसे हर दिन मैं सो रहा हूँ, वॉक भी करता रहूंगा, खाता भी रहूंगा, पीता रहूंगा, और जो मैं अच्छे काम बुरे अवॉइड करूंगा, तो
जी
हर रोज एक 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 दिन ऐड होता जाएगा मेरी लाइफ में। तो आज मैं 65+ हूँ, और बचपन 60-70 भी आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा, चलता ही रहेगा।
जी
और
जी
आप एमए साइकोलॉजी की बात करें, बाई चांस ना मेरी बेटी ने ना बी वो किया हुआ है, बीएमएस, बैचलर ऑफ
जी
मैनेजमेंट स्टडीज, तो वो कर रही थी पैरा साइकोलॉजी में ना, सेल्फ स्टडी कर रही है 4-5 साल से। तो
जी
मुझे लगा कि ये करे जा रही है, कभी इसको लाइफ में मतलब शी डजंट वांट टू डू सर्विस, जॉब ऐसे नहीं करना चाहती, वो सोशल सर्विस करना चाहती है। तो मैंने कहा बेटा कहीं कभी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी तेरे को जॉब करने की, तो तेरे हाथ में ना एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे तेरी जितनी मर्जी नॉलेज हो, एक डिग्री ले ले एमए की, ताकि कभी जरूरत पड़ी तो आप कहेगा यस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसकी स्टैट्स वीक है मेरी, उससे बेटर है स्टैट्स, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। मेरा शौक था साइकोलॉजी में, क्योंकि मेरी हैबिट है ऐसे ना, कोई बात करता है ना तो मैं ऐसे समझाना शुरू कर देता हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी से ही बेसिकली मैंने वो साइकोलॉजी सीखी है। वो साइकोलॉजी क्या है कि जो हमारे सामने आ जाता है, अगर हम उनको कोई शिक्षा दे सकते हैं, मेहनत करो, काम करो, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दिस दैट। तो मुझे ना आज ही सुबह ही एक व्यक्ति ने कमेंट किया, मैं ऐसे
जी
पूछ रहे, बड़ा क्लोज है मेरे, वही जो गेस्ट आए हुए थे आज हमारे यहाँ,
जी
मैंने ऐसे पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा भी आप मेरी ना कोई डिसक्वालिटी या क्वालिटी बताओ, बहुत रेयर है ऐसा, मैंने क्वेश्चन किया। तो उन्होंने ना मेरे को, आपसे शेयर कर लेता हूँ, उन्होंने मेरे को ना दो चीजें बताई, कहते हैं एक तो यू आर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट की कोई डेफिनेशन है, अब हमें साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, इंटेलिजेंस में कितनी थ्योरीज है। दूसरा उन्होंने कहा आपके पास ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो ये कमेंट मुझे अच्छा लगा, तो ये ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से मैं जूझा हूँ लोगों की नजरों में, कि आज ना मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाती है। एक उदाहरण देता हूँ,
जी
मैं ना पंजाब एंड सिंध बैंक में 1983 में ज्वाइन किया था, और 2015 में मैं रिटायर हुआ हूँ आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ सर्विस। उससे पहले भी मैंने कई कई जगह जॉब की है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उससे पहले 2 4 साल न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उससे पहले 2 साल एयर हेडक्वार्टर, उससे पहले 6 साल दिल्ली वाटर सप्लाई में एज ए डेली वेजर।
जी
तो
जी
जब मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में जयपुर पोस्टेड था, तो मेरा भी सेकेंड ईयर रनिंग था जॉब का, तो एक मेरे से काफी सीनियर थे, असिस्टेंट पोस्ट थे उनके, सानी साहब। तो पता नहीं ऐसा आया मेरी लाइफ में कि मैं भी लोगों से, कुछ कुछ लोगों से मन की बातें कर लेता हूँ, कुछ लोग भी मेरे से सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। नाउ यू डोंट नो दैट पर्सन, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, तो उसको कोई फायदा नुकसान नहीं है।
जी
जनरली मुझे कहा जाता है तो मैं किसी की बात उससे रिलेटेड या रेलेवेंट पर्सन से अवॉइड करता हूँ। तो उन्होंने कहा, यार धवन, यार एक ना प्रॉब्लम है, मैं तेरे को ना प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, बस मुझे ना उसका सोल्यूशन बता, ये उसने मुझे बोला। तो मैं कहा, मुझे मत बता प्रॉब्लम, मैं पर सोल्यूशन बता देता हूँ। हेलो,
जी जी
तो मैं कहा ठीक है मत बताओ। मैंने उनको सोल्यूशन, मेरे मन में ये बात है 1984 की, मोस्ट प्रोबली 16 और 20, 36 37 साल पुरानी बात है।
जी
मैं कहा, सानी साहब तुम्हारी प्रॉब्लम ना परसों ठीक हो जाएगी। तो ना उछला और मेरे से हाथ मिला, कहना थैंक यू यार, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरा मतलब छुपा हुआ ये था कि प्लीज गिव द टाइम टू द प्रॉब्लम।
जी
हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, अब ये मेरा मैसेज है, अगर कोई सुनेगा मेरी ये बात,
जी
मैंने ऐसा लर्न किया है अपने जीवन से कि हमारी जिंदगी में ना समस्याएं तो आएंगी भैया। ये भैया भाषा नॉर्थ इंडिया का, मैं
जी
दिल्ली से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। देखो,
जी जी
हमारे जीवन में ना समस्या तो आनी आनी है, ठीक है। मोस्टली जो समस्या है ना, मोस्टली उनके सोल्यूशन भी ना आ जाते हैं टाइम के साथ साथ, एक आधी प्रॉब्लम के नहीं भी आते। रियलिस्टिक हमारी अगर अप्रोच होती है, अब रियलिस्टिक को डिफाइन करना मुश्किल है, ठीक है, वो अब केस टू केस है।
जी
तो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वी शुड सिंसियरली मेक एफर्ट्स, कुछ एफर्ट्स के साथ, कुछ टाइम के साथ। कई सारी प्रॉब्लम होती है ना टाइम के साथ ना दूर। अब मेरे फादर की डेथ का इशू था, आज भी मुझे याद है, आज मैं फादर की डेथ की 2 3 बार बात कर चुका हूँ। लेकिन उनकी जो सिवरिटी थी, जो डे वन पे मैंने कहा खाना कहाँ से खाएंगे, वो चीज नहीं थॉट था मेरे मन में, कहाँ से आज मैं खाना खाऊंगा, वो एक इशू मेरा सेटल हो गया। प्रॉब्लम्स जो है ना हमारे जीवन में आएंगी, वो
जी
सॉल्व भी होती जाती हैं।
जी
हम उनको बहुत ज्यादा परेशान होकर कोने में नहीं बैठना, कूल डाउन होके सोचें, चलो किसी फैमिली मेंबर से डिस्कस कर लो, नहीं समझ आ रहा, तो प्रॉब्लम्स आएंगे और उनके सोल्यूशन भी आएंगे।
जी अच्छा धवन जी, आपसे अगर पूछूं कि बचपन की कौन सी याद आपको आज भी याद है और जिसको याद करके आप आज भी मुस्कुरा देते हैं, तो आप क्या कहेंगे?
मुस्कुरा देता हूँ या रो देता हूँ?
मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुराहट वाली यादें।
मुस्कुराहट वाली, अभी मैं आपकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा हूँ। बचपन की बात तो मुझे सोचनी पड़ेगी, जिसको बचपन रिपीट करो प्लीज।
आपकी बचपन की कोई भी याद जिसको आप याद आते ही एक बार मुस्कुरा देते हैं, कोई मीठी सी
हाँ चलो,
अच्छी
एक
सी
मीठी
याद।
सी याद आ गई मुझे कि एक ना फिल्म का गाना है, वो
जी
गाना मैं थोड़ा गाने की कोशिश करता हूँ।
जी जी
वो गाना है, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो, ऐसे गाना है किशोर कुमार की आवाज में।
जी जी
तो
बहुत
हुआ क्या,
प्यारी।
मेरी ना बेटी पैदा हुई थी 1989 में,
जी
नवंबर 1989 में। आई एम हैविंग टू डॉटर्स, तो बड़ी वाली 1989 में हुई थी, छोटी वाली 1995 में हुई थी, जो एम ए साइकोलॉजी करी, जो मेरी क्लास फेलो है।
जी
तो वो बेटी ने ना शायद 11 महीने या कुछ मतलब 1 साल के आसपास की उम्र में ना उसने चलना शुरू किया।
जी
तो ऐसे ना वो पहली बार मुझे जो याद है ना वो चल के आएगी ना, ऐसे टेबल थी ये छोटी टेबल ड्राइंग रूम में जो पड़ी होती है ना, तो उसको ऐसे 2-3 स्टेप चल के ना आई और टेबल को ऐसे पकड़ के खड़ी होगी ना, तो
जी
मैंने ये गाना गाया था उसको देख के। तो वो मुझे ना वो सीन है ना वो अभी जब भी याद आता है तो मैं मतलब खुश होता हूँ और मुस्कुरा देता हूँ।
जी
हालांकि मेरा बचपन नहीं है मतलब
ये
बीच
तो
में
बच्चे
कहीं।
का बचपन है।
हाँ तो एक्चुअली हुआ क्या बेटे कि बचपन ऐसा है ना, अब जब मैं बचपन बताया ना 11 साल में तो मैंने वो कर लिया
जी जी
रोटी के बारे में सोचना, तो वहां से ना एक फाइट मेरी स्टार्ट हो गई थी। तो
जी
मुस्कुराने की बातें याद और उससे पहले की करने की कोशिश करता हूँ कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल
जी
स्कूल में एक बार, आई एम नॉट ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, तो ऐसे मैच हुआ, दो टीमें बंट गई, फुटबॉल का मैच हुआ तो 1-0 से हमारी टीम जीती थी और मैंने वो गोल किया था, ऐसे
जी
अभी याद आ रहा है।
जी
तो वो बात याद आ रही है तो मैं खुश हो रहा हूँ, थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ। आई एम नॉट ए इवन ए प्लेयर ऑफ फुटबॉल,
ओके
ये मैंने याद की है बात, मतलब ऐसे
जी
कॉन्स्टेंटली याद आती नहीं मुझे ये बात।
जी ऐसा देख के भैया आपके बारे में सुन के लगता है कि आपने बचपना तो बहुत जल्दी खो दिया, शायद इस वजह से बचपन की कोई
एक ना
यादें नहीं।
डायलॉग बोलता होता हूँ, एक
जी
डायलॉग बोलता होता हूँ। देखो मेरे डैडी ने ना जो उस उम्र तक, सच बात यह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी तो वो शायद उस वजह से गुस्से वाले बन गए थे वगैरह वगैरह।
जी
वैसे
जी
मैं बड़ा खुश हूँ कि जैसे कहते ना मार मार के पढ़ाया, वी आर टू ब्रदर्स, तो बड़े ब्रदर को कम मार पड़ती थी मुझे ज्यादा, क्योंकि हमारी चाय की दुकान पे मैं ही बैठता था, बड़ा ब्रदर खेलता था। तो जब मैं दुकान पे बैठता था तो मेरे से वो चाय का गिलास है ना वो टूट गया, कभी
जी
बैठो कभी जो बटर होता है छोटी सी टिक्की उस पर बर्फ डालनी, पिघल गई बर्फ, तो टिक्की है ना पिघल के ना शेप चेंज हो जाती थी, तो
जी
मेरे को मार पड़ती थी नेचुरली। ये जो कहानी फादर वाली है ना वो सब 11 साल से पहले की कहानी है। अब मेरी
जी
मदर कहती थी यार सारा दिन तो दुकान पे बैठा है शोधा, शोधा मतलब बेचारा खेला
जी
भी नहीं है और मार भी खा रहा है, ऐसे बोलते थे वो मदर, मुझे ऐसे डायलॉग याद है। फिर फादर की डेथ हुई तो मैं जब जॉब पे लगा ना 15, 15.5 साल की उम्र में डेली वेजेस, उससे पहले मैंने एक शॉप पे भी काम किया ऐसे, तो मैं ऐसे मुझे लगा कि मैं अपनी माता जी का, अपनी मदर का ना पिता बन गया हूँ, क्योंकि जो
जी
अर्निंग पर्सन आप सैलरी दे रहा, वे मदर कुछ कहती नहीं थी मुझे, मैंने मिसयूज नहीं किया उनके उस चीज का, लेकिन शी नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग, मुझे कभी भी नहीं कहा ये कर या मत कर, वो बस यही कहती थी सो जा यार, सारा दिन पढ़ता रहता है सारा दिन काम करता रहता, सो जा, वो यही की कहते थे सो जा, सोता
जी
बहुत कम था मैं। तो इसलिए ना मैं 15, 15.5 साल की उम्र में ना अपनी माँ का बाप बन गया था, सॉरी टू से। मेरी मदर ने वैसे मुझे ना बहुत प्यार दिया, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा कभी नहीं जिंदगी में, बस मेरी यही इच्छा रहती थी कि यार मदर ने इतनी हार्डशिप देखी है ना, तो जब मेरी ऐसे ऑफिसर लग गया मैं बैंक में, तो मेरे मन में सबसे पहला थॉट आया, अनमैरिड ही था, तो मेरे मन में थॉट आया यार मदर को ना अब मेरी सैलरी अच्छी होगी ना मदर को ना खुश रखूंगा, ऐसे
जी
मन में मदर का एक बहुत ही, हर बंदे को अपनी माँ सबसे प्यारी होती है दुनिया में, मुझे भी, लेकिन मेरे साथ एक वो थी कि शी हैज सीन हार्डशिप, तो मेरे मन में रहता था कि उसको कुछ मैं खुशियां दे पाऊं, शायद मैं दे पाया था।
जी धवन जी, अभी तो आपकी संघर्षों की कहानी भी सुनी और उसमें भी आप मुस्कुराते रहे और बता रहे हैं कि उसमें भी आप कितना कुछ सीखते गए। तो जैसे कहते हैं कि आपके कुछ गम और जब मुश्किलें ज्यादा होती हैं, परेशानियां ज्यादा होती हैं, तो आप संगीत में या किसी कला में अपना मन लगाते हैं। और अभी आपके दो लाइन को सुन के लगा कि संगीत में आपकी रुचि जरूर रही होगी, तो आपसे गुजारिश करूंगी कम से कम 2-3 लाइन अपने किसी सबसे पसंदीदा गाने को गा के हमें सुनाइए।
बता सुनाता हूँ, लेकिन पहले मैं कारण बताता हूँ मैं क्यों, मतलब मेरा शौक है संगीत में।
जी
मेरे पिताजी ना उन दिनों में, ही एक्सपायर्ड इन 67, तो उससे पहले की बात है, आई थिंक इन 63 64 के आसपास ना, वो रेडियो बहुत बड़ा साइज के रेडियो होते थे ना, वो खरीद के लाए थे। तो हमारी गली गली सिस्टम था दिल्ली में,
जी
ऐसे 20 20 घरों की एक एक गली होती थी, तो आमने सामने होके 40 घर, तो उन गली में ना एक दो ही रेडियो थे। तो मेरे फादर को ना गाना सुनने का बड़ा शौक था, वो चाय की दुकान बंद होती थी 10 11 बजे, उसके बाद लगाते थे गाने।
जी
तो तब ना दुबई वगैरह यूएई की कंट्रीज में ये बड़े होके पता लगा ये चीजें, तो वहां चलते होते तो मोहम्मद रफी के गाने बहुत चलते थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। तो माई
जी
फादर वाज ए फैन ऑफ मोहम्मद रफी,
जी
तो वो अब गाने चल रहे हैं, हम भी लेट, एक्चुअली गर्मियों का दिन है तो लेट सोते हैं लोग, हम तो वट एवर, तो गाने ना 10 से 11 छाया गया, फिर 11 के बाद वो अरेबियन कंट्री के, वहां से रफी लता के गाने, तो हमारे मन में भी रफी के। उन दिनों में 60s का दौर था, तो मेरे फिर फेवरेट 60s के गाने हैं। तो मैं आपको फिर कारण, मेरे पिताजी हैं मेरा शौक का, जो गान मेरे को मतलब अपनी जॉब वगैरह के बाद में ना,
जी
मेरे को गाने सुनने का शौक ऐसे मन में था, गाना गाने का नहीं, लेकिन हाँ बाथरूम सिंगर मैं भी हूँ बाकी लोगों की तरह। तो मैं आपको अपने हेलो,
हेलो हेलो, बीच में दब
हाँ
गया था,
हेलो,
ये बच्चे लोग बदमाशी कर रहे हैं जी, ये बच्चे लोगों की वजह से होल्ड डब
हाँ
गया था। हाँ,
कोई बात नहीं।
गाना सुना रहे थे
तो
आप।
मैं वो कि मोहम्मद रफी का फैन मैं भी हूँ, तो मोहम्मद रफी के गाने को
जी
एक दो लाइनें सुनाता हूँ। वो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। दोस्ती पिक्चर आई थी, दोस्ती, आई थिंक वही 64 65 की शायद मूवी है, उसके मैं दो लाइनें सुनाता हूँ। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी, के तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। जी
बहुत सुंदर धवन जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं
थैंक यू।
जी। धवन जी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी कि
जी
आप अभी, जैसे आपने खुद तो बहुत कुछ सीखा है और सीखते सिखाते चल रहे हैं, पर कहा जाए कि नई पीढ़ी के लिए, जो नई पीढ़ी आज बन रही है, उसके लिए आप कौन सी 3 बातें कहेंगे जो उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए?
देखो ऐसा है, नई पीढ़ी, मैं तो जो मुझे ठीक लगा है, जो मेरा मेरे जीवन में जो चीजों पे मैं चला हूँ, और मैं समय तो मैं सक्सेसफुल ही रहा हूँ, और मैं उन चीजों को ना कभी अजमा के ना मैंने खोया नहीं कभी। देखो ये कोई जिंदगी को हार जीत का गेम नहीं है, मतलब जैसे एक सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, जैसे ट्रूथफुलनेस, सच्चाई
जी
सबसे पहली चीज है ना। मैं अभी सच्चाई के ऊपर ना एक छोटी सी घटना बाद में बताता हूँ, पहले मैं 2 3 बातें आप कह रहे बता देता हूँ,
जी जी
जो मामूली सी घटना बताऊंगा सच्चाई के ऊपर। तो एक तो सबसे बड़ा जो मेरा फंडामेंटल है जीवन का, मतलब दो हैं जुड़े हुए, एक है सच्चाई, बस सत्य के रास्ते पे चलना। ये नहीं मैं कहता हूँ कोई मर्डर करवा दो जी तुम सच्चाई के ऊपर, आई मीन कि सच्चा जीवन, मैंने ये नहीं कि कभी मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हो सकता है कि बहुत बोले हो, लेकिन मेरा रास्ता सच्चाई का है।
जी
दूसरा, अभी मेरे को लगता है कि अब मेरा सच बोलने से किसी को बहुत लॉस हो सकता है, तो मैं वहां पर ना झूठ का सहारा लेता था कि इस सामने वाले को मेरे सच से नुकसान ना हो जाए, तो मैं वहां ज्यादा तो कोशिश करता था झूठ ना बोलूं, चुप रहूं, मतलब कोशिश होती थी मैं चुप रहना, मोस्टली मैं चुप ही रहता था। झूठ तो खैर बहुत कम बोला होगा मैंने शायद जीवन में, लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा कभी नहीं बोला। सेकंड इज हार्ड वर्क पेज, कि जो हमारा हार्ड वर्क
जी
है ना वो अल्टीमेटली ना हमें पे करेगा। मान लो अभी जैसे एमए के एग्जाम्स ही हैं, अब मैं कहूंगा ठीक है मेरी किस्मत में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। नो, मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करके आपके कम नंबर आ सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े तो कम नंबर पक्का ही आने वाले हैं,
जी जी जी
ठीक है ना। तो यू वर्क हार्ड, नंबर कितने आएंगे वो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चांस भी मैटर करता है। उस दिन बाई चांस एक चीज आपको भूल गई, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने स्टैट्स की बात की अपने डॉटर के लिए,
जी
और मैंने उसको स्टैट्स के ना बता दिया ये आए क्वेश्चन ऐसे कर देना ये ऐसे, उसको फंडामेंटल्स नहीं पता, लेकिन उसको क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। चार क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल, उसके चारों ठीक है, मेरा एक आंसर गलत है, इट्स ओके। और एक बात है कि प्रॉब्लम्स है ना वो हमेशा नहीं रहती। आज आपकी प्रॉब्लम है ना, देखो हमें ना मान लो सर में दर्द हो रहा है, फिर ना हमारे घुटने में ना बहुत तेज चोट लग गई, किसी ने डंडा मार दिया, हमें सर दर्द भूल जाएगा, घुटने की चोट याद आ जाएगी, है ना। तो मैं एक ऐसा समझता हूँ कि जो हमारा प्रॉब्लम का ना एक डिब्बा है, उसमें ना मान लो जीवन में 10 प्रॉब्लम ही ठहर सकती है, एक नई प्रॉब्लम 11वीं आएगी ना, तो नीचे से एक प्रॉब्लम 10 में से निकल जाएगी, फिर 10 ही रह जाएंगी। तो कहने का मतलब कुछ जो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चक्की होती है ना चक्की, उसमें ऊपर से हम गेहूं डालते हैं ना, नीचे से आटा बन के निकलता रहता है।
जी जी
ऊपर से डाले जाते डाले जाते डाले जाते, नीचे से निकलता जाता है निकलता जाता है, तो एट अ टाइम उसमें इतना ही गेहूं प्लस आटा रह सकता है। ऐसे हमारे जो हमारे अंदर एक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही रह सकती हैं, उसका एग्जांपल मैंने 10 प्रॉब्लम दिया, तो हमारे जीवन में ना एट अ टाइम 10 प्रॉब्लम रहेंगी, एक नई प्रॉब्लम आएगी ना तो पिछले एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी निकल जाएगी।
जी जी
तो प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे टाइम के साथ निकल जाती है। फिर एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो हर बंदे के जीवन में आती हैं अपनी अपनी लायकता के हिसाब से,
जी
है ना। एक बंदा 10th पास है, थोड़ी क्वालिफिकेशन मेन की वजह, तो उसको वो सोचे जी मेरे को IAS बनना है, मुश्किल है ना, IAS की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
जी।
तो 10th पास के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। या कोई नहीं भी पढ़ पाया, उसको अपनी दूसरी काबिलियत है, मेहनती है, स्पोर्ट्स में तेज है, खेलने में या खेती बाड़ी में तेज है, वट एवर, तो अपनी अपनी फील्ड में हर बंदे को अपॉर्चुनिटी जनरली मिलती है, और उसमें जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें मेहनत करके बंदा
आगे निकल सकता है,
आगे निकल सकता है। एक मैं ट्रूथफुलनेस की शॉर्ट एक कहानी सुना के ना मैं अपना आंसर ये वाला फिनिश करता हूँ। मैं नया नया ना मैनेजर, हमारे यहाँ क्या होता है बैंकों में ना, जब ऑफिसर से मैनेजर बनता है ना उसको गांव की ब्रांच में भेजते हैं।
अच्छा,
तो वो तो गांव की कहानी मैंने वैसे गलती से सुनाई ना दियो, चलो ये इंटरव्यू चल रहा है तो इसमें जो सुनने वाले सुनेंगे पहली बार। ये क्या हुआ कि मैं छोटी सी वैसे बात है, बड़ी ट्रूथफुलनेस की तो मेरी लाइफ में बहुत घटनाएं हुई हैं।
जी जी
25-30 तो हुई है, ऐसी छोटी सी एक बात बताता हूँ। क्या हुआ कि मैंने पहले 10-15 दिन हमें चार्ज लेने में लगते हैं, वो जो पुराना मैनेजर है उससे चार्ज लिया, तो हम इस साइड बैठते हैं मैनेजर सीट पे नहीं बैठते। जब मेरा चार्ज पूरा हो गया तो मुझे मैनेजर की सीट पे पुराने मैनेजर ने बिठाया, धवन सब बैठो। तो गांव की ब्रांच में ना एक जैसे लगते हैं सारे,
जी जी
ऐसे 3-4 कुर्सियां थी, और एक मैं मैनेजर हो गया, एक फील्ड ऑफिसर, एक क्लर्क, एक कैशियर, एक गनमैन और एक PNS, हम 5-6 लोग थे।
जी
तो सेकंड या थर्ड डे था मेरा मैनेजरी का, मैनेजरी वाले ऐसे स्लैंग में मैनेजरशिप को मैनेजरी बोलते हैं।
जी जी
आई एम नॉट श्योर, बड़े थोड़े दिन ही हुए थे, 2-3 में भी 4।
जी
तो मेरा जो फील्ड ऑफिसर साहब थे मिस्टर सोडी, वो एक लेटर लाए मेरे सामने, कह रहे तमन साहब साइन कर दो। तो मेरी मेरे ना स्टाइल ये रहा है, मैं ना साइन पहले करता हूँ बाकी चीजें बाद में देखता हूँ, ताकि वो बंदा परेशान ना रहे भाई साइन करेगा कि नहीं करेगा,
जी
मेरा अंदाज रहा है। तो मैं साइन कर दिया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार सोडी साहब ये डेट जो है ना, मान लो आज क्या डेट है, आज 14 है ना, 14 मार्च,
जी जी चंद्र
14 मार्च है मेरे पास। 14 मार्च को वो लाया लेटर साइन करवाने, उस पर डेट डली हुई है 4 मार्च की, 10 दिन पुरानी, ठीक है। और लेटर में पता है क्या लिखा है, एक बंदे का 2 भैंसों के लोन की एप्लीकेशन आई थी, गांव की बातें है ना, उसमें भैंस ऊंट ऐसे लोन, 2 भैंसों के लोन की एप्लीकेशन थी, उसमें लिखा था 7 डेज के अंदर तुम बैंक नहीं आओगे तुम्हारी लोन एप्लीकेशन कैंसिल मानी जाएगी और वापस भेज देंगे। एक ना हरियाणा में, मैं हरियाणा में पोस्टेड था, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम एक संस्था है, वो हमें ना वो देती थी क्या कहते हैं सब्सिडी।
जी जी
तो ऐसा हुआ था कुछ लोग ना चीजें नहीं खरीदते थे, सब्सिडी खा जाते थे, दिस दैट करप्शन वगैरह, तो ही अज्यूम कि ये कुछ नहीं खरीदेगा, ध्यान से नहीं खरीदेगा, सब्सिडी खा जाएगा। तो मैं कहा सोडी साहब ये डेट तुसी मतलब पाई है 10 दिन पुरानी और 7 दिन तुसी लिख रहे हो, 7 दिन तो हो गए ने। तो उसने जो बोला ना पंजाबी, कह रहा एवं होंगे तवन साहब, एवं होंगे एवं होंगे, मतलब ऐसे ही होता है
जी।
तो मेरा ऑलमोस्ट पहला दूसरा ही वर्किंग डे था तो मैंने साइन कर दिया, मैंने गलती की लेकिन मैंने साइन कर दिया और लेटर दे दिया। वहां ना पोस्टमैन ना हैंड टू हैंड लेटर दे आता था गाँव में जाके ना डिलीवर। अब उसके चाचा जी थे ना जो उस बंदे के जो बॉरवर प्रपोज बॉरवर था जिसने भैंसे, उसके चाचा जी ना आर्मी से ना सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर हुए थे। 2-2.5 घंटे के बाद ना वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब ना आ गए सरदार जी, वो उस समय 70+ तो थे ही
जी।
तो वो 2-व्हीलर स्कूटर एक खटारा था, मतलब खटारा में बेइज्जती नहीं कर रहा, मतलब ही वो सो पर्टिकुलर अच्छा चलता होगा, वो एक स्कूटर पे ना वो अपने भतीजे को पीछे बिठा के आ गए बैंक में। अनुपम जैसे ही बैंक में घुसे ना, वो बैंक में घुस के ना आइडिया लग जाता है हु इज मैनेजर वो
जी।
वैसे गांव में ना छोटी छोटी बातें ना एकदम आग की तरह फैलती हैं। तो उन्होंने मुझे गालियां निकालनी शुरू की, मेरे को जिंदगी में ना 2 बार इतनी ज्यादा गालियां पड़ी हैं एट द स्ट्रेच, दूसरी कब पड़ी हैं वो चलो अलग कहानी है। तो वो उन्होंने मुझे जो गालियां निकालनी शुरू की ना, मैं परेशान हो गया, यू आर करप्ट यू आर दिस यू आर दैट, ऐसे गलत काम करते हो, झूठे हो तुम इंसान, ऐसे बोलते गए, चुप ही ना करें। मैं ना वेट कर रहा था कि सरदार जी ने कब चुप करें, कब बस करें, कुछ नहीं बोल रहा, देखे जा रहा था मैं उनको, मन ही मन सोच रहा था कब चुप करें। खैर एक्चुअली आफ्टर फ्यू मिनट्स उन्होंने बंद कर दी गाली देना, शाउट करना हेलो
जी जी जी।
फिर जैसे मैं बंद किया ना तो मैंने बीच में जो है ना इशारा कुछ नहीं बोला, खड़े खड़े गाली दे रहे थे तो मैं बैठा था, एक बार मैंने इशारा किया होगा गालियां सुनते सुनते बैठने का, नहीं बैठे वो, फिर चुप किया ना, कहते हूँ जवाब दो मेरी गाल दा, नाउ यू आंसर माई क्वेश्चन। मैं कहा सर प्लीज बैठो, तो बैठ गए, कहते हाँ बोल या बोलो जो भी बोलो। तो मैंने ना पीएन को बोला एक गिलास पानी लाना, तो उनके सामने पानी रखा। मैंने कहा सर सब तो पहली, मैंने जो बोला होगा ना, मैंने कहा सब तो पहली गल है कि मैंने लेटर है ना ये बैक डेटेड साइन किया है नोइंगली विच इज रॉन्ग,
तो
मैंने इमीडिएटली सबसे पहले अपनी गलती मानी
जी।
वो सरदार जी ना अपनी सीट से ना खड़े हो गए, उछल गए जैसे, यू आर माई फ्रेंड, यू आर ए ट्रूथफुल पर्सन। तो मुझे मेरे कैशियर ने बताया सरदार जी ना आसपास के सारे ऑफिसर्स बैंक पोस्ट ऑफिस थाने वाले थाने ने डरते हैं
जी।
बस मुझे बाद में बताया गया, वो कहता यू आर माय फ्रेंड, कहते मैनेजर साहब वहाँ ना लोग मैनेजर साहब एड्रेस करते हैं बैंक मैनेजर, मैनेजर साहब अच्छे कोई भी हो गए कोई भी लोड हो गए कोई जरूरत हो मेरे मेरे से बात करना दिस दैट ऐसे। तो और भी इसके आगे उनकी और छोटे मोटी कहानी है। तो एक ना थोड़े दिनों बाद ना एक बंदा आया मेरे बैंक में वहां ब्रांच में
जी,
मतलब वो काफी स्मार्ट 6 फीट प्लस से थे वो नॉन सिख, वो ना नॉन सिख में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विलेज ना ज्यादातर ना सिख थे वहाँ सरदार लोग थे
जी।
तो ऐसे बड़ा स्मार्ट एक बंदा आया सीधा घुस कर यू आर मिस्टर धवन, ऐसे काफी अच्छी अंग्रेजी बोली उन्होंने, यू आर मिस्टर धवन. तो मैंने एकदम इशारा किया, बैठे थे, यस सर. फिर नो 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 आई मीन हरी. तो फिर मैं भी खड़ा हो गया, मैं कहा यस सर. जैसा आम ब्रिगेडियर, उन्होंने अपना नाम बताया, भूल गया देवेंद्र सिंह या कुछ, आगे नाम क्या क्या सिंह रखा ना, आम ब्रिगेडियर. ब्रिगेडियर ना आर्मी की बहुत बड़ी पोस्ट है, मेरे ख्याल टॉप से थर्ड पोस्ट है. सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, आगे फिर
ब्रिगेडियर.
काफी बड़ी पोस्ट है. तो ब्रिगेडियर सुन के मैं काफी इम्प्रेस हुआ, हल्का फुल्का डरा भी. मैंने कहा भी क्या हो गया ब्रिगेडियर साहब बैंक में. हाँ ब्रिगेडियर धमेंद्र सिंह को नाम मैं ऐसे रैंडम बोल रहा हूँ, भूल गया. कहते मैं ना उन्हों का मुंडा है ना, फिर पंजाबी में आ गए. वो जो सरदार जी आए थे ना मेरे पास,
जी जी जी,
कहते भी वो मैं ना कल, मैं ना श्रीनगर पोस्टेड हाँ, एंड विच इंग्लिश में पंजाबी में, कहना पोस्टेड इन श्रीनगर, एंड मैं उनका बेटा हूँ, एंड ही हैज आस्क्ड मी बिफोर लीविंग फॉर श्रीनगर, यू मस्ट मीट दैट पर्सन, ही इज अ ट्रूथफुल पर्सन. मेरे लिए कितनी बड़ी गिफ्ट है अनुपम
जी.
मतलब ऐसी एक बात कर रहा हूँ, ये तो छोटी सी बात बताई है, वो मतलब एक कहीं से हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस बन जाता. और मैंने बहुत जगह ना सच्चाई का मैंने देखा कि हमें शुरू में कभी कभी लगता लॉस होगा,
जी जी,
अल्टीमेटली वी आर विनर. मैं विनर के लिए सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाया कि आई शुड विन, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता झूठ के ऊपर. मतलब गलती से मेरे से कभी मर्डर हो गया ना, ऐसे मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे में इतनी ताकत है, मैं जज साहब को कह दूंगा हाँ सर मेरे से हुआ है ये. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कह दूंगा, मतलब रब करे ऐसा कभी ना होवे. बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग बेटर बिलीफ है कि जो ट्रूथफुलनेस है ना, ये हमें बहुत सारी ताकत देती है. मेरे को ऐसा बैंक की बहुत सारी घटनाएं हुई है जब मैं सच्चाई के रास्ते चला हूँ, और मुझे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और अल्टीमेटली आई वाज विक्टोरियस.
जी जी,
कितनी घटनाएं हुई हैं
जी. आपने तो बहुत ही सरल शब्दों में कुछ कहानियों से, कुछ अपने अनुभवों से बता दिया कि जो अवसर हैं वो हमें कभी भी मिल सकते हैं, और जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ना समझें तो सॉल्यूशन अपने आप ही आ जाता है. एक स्थिति है जिसमें अपने आप ही हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है. और तीसरी जो आपको बार बार स्ट्रेस करते आ रहे हैं, सत्य या सच्चाई के ऊपर, तो जो सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य
का, ईमानदारी, ईमानदारी पे एक शब्द बोलूंगा मैं, आप बात पूरी कर लीजिए.
जी जी, नहीं आप बताइए उसको.
हाँ ईमानदारी का ऐसे मैं अनुपम जी कहना चाहूंगा कि बैंक में जैसे मैं मतलब आई वॉज रिटायर्ड एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर, मैं जोनल हेड था भोपाल जोन में, तो 370 प्लस लोग अंडर थे.
जी,
तो मेन अंडर 370 ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जोनल मैनेजर की ना फाइनेंशियल पावर्स बहुत ज्यादा होती है. हम ना एक आदमी को 10 करोड़ तक का लोन दे सकते हैं.
कौन से बैंक में थे आप?
आई वॉज इन पंजाब एंड सिंध में.
अच्छा अच्छा जी.
हाँ, तो मैं एक बड़ा कटु सत्य बताने वाला हूँ
जी,
कि वहाँ पर ना रेट फिक्स थे. लोन आप जैसे ना 1 करोड़ का लोन करोगे, उसका 1% 1 लाख का रेट फिक्स था.
जी जी.
तो मैंने 5 करोड़ का ले, एक पार्टी आई 5 करोड़ का लोन लेने, तो उसने कहा हाँ भी 5 ठीक ने, 5 का मतलब 5 लाख.
जी जी.
तो मैंने कहा सर काम थोड़ा हो जाएगा अगर पेपर ठीक होंगे, पेपर मतलब फाइनेंशियल पेपर, प्रॉपर्टी के जो हम सिक्योरिटी, मैंने कहा थोड़े पेपर ठीक होंगे, प्लस बड़ी सारी चीजें होती है, हम साइट देखते हैं बिजनेस में लगाना है कि नहीं पैसा. सो मैंने वो एक बैंकिंग की चीजें हैं. तो मैं कहा सर थोड़े पेपर ठीक होंगे ना, थोड़ा लोन हो जाएगा, तो वो मैंने नहीं चाहिए कुछ. कहना आई यू आर बेवकूफ, से आज तक नहीं देखे. मैं कहा एक देख लो थोड़े सामने बैठा है. मैंने बोला उनको, और मैं सिर्फ मैं ना गर्व से कहना चाहूंगा, गर्व से, कि एज ए ब्रांच हेड, एज ए जोनल हेड, 0 पैसा मैंने जिंदगी में किसी भी आदमी से 1 रुपया नहीं लिया, जिसको लोग रिश्वत कहते हैं.
बहुत,
और मैं ना बहुत खुश हूँ. मतलब मेरे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जब मैं, जबकि बचपन में 1-1 पैसे के लिए तरसा हूँ, लेकिन मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे पर पैसों की कमी है. पैसे है ना, पैसे इज वन वेरी स्मॉल थिंग, हमारे जीवन की जो रिक्वायरमेंट है ना,
जी,
हम मेहनत करते हैं पूरी होती है, इट्स अ पेंशनेबल जॉब,
जी,
हमें सफिशिएंट पेंशन मिलती है जिससे हमारी दाल रोटी, दाल रोटी का मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है,
एक
रिश्वत की बेटे रुपया नहीं लिया, और आई एम सो हैप्पी इन मेरी स्टेट ऑफ माइंड इतनी स्ट्रांग है, उस वजह से और ज्यादा स्ट्रांग है. यस, इंक्वायरियां भी चलती रहती हैं, लेकिन मैं इंक्वायरी फेस कर लेता हूँ बड़े आसानी से, आंखों में मतलब ऐसे गुस्से में नहीं, आंखों में आंखें देख के, मतलब फेस करके मैं ना इंक्वायरी भी चल रहती है. कई बार हमें गलत सजा भी हो सकती है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. सजा कभी कभी हमारा साइकोलॉजी में भी है, वो एरर टाइप वन एरर टाइप टू एरर,
जी,
तो टाइप वन एरर हो जाती, ठीक है, अगर कभी सजा भी मिल गई वो दैट इज पार्ट ऑफ गेम. अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है,
जी,
ये मेरा फर्म बिलीफ है.
जी, तो वही एक रुडयार्ड किपलिंग की कविता है, इफ मैं बच्चों को या जिनको भी कुछ भी बोलती हूँ, कहती हूँ एक बार वो कविता पढ़ लो तो जीवन का सारा पाठ समझ में आ जाए. तो आपने तो अपने जीवन के उदाहरण से ही उन सभी पाठों को जीवंत कर दिया है, तो इसके लिए मैं आपका
आभार व्यक्त करती हूँ. आई एम अ स्मॉल पर्सन, इतने बड़े व्यक्ति का नाम लिया अपने किपलिंग का, हमने बचपन में पढ़ी थी उनकी ये कविताएं,
जी,
तो लेकिन आई एम टू स्मॉल पर्सन, वेरी वेरी ऑर्डिनरी, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इट्स नॉट इट्स अ स्मॉल, आई वाज अ लेबरर आल्सो, उसमें क्या हमारे रोल प्लेइंग है. देखो हमें गलत काम नहीं करना, रिक्शा चलाओ या जनरल मैनेजर बैंक के बनो या आईएएस ऑफिसर बनो, कोई फर्क ही नहीं है
जी, यही तो प्रेरणा
चला के भी हम दाल रोटी कमानी है.
जी, यही तो प्रेरणा का सबसे बड़ा आप उदाहरण दे रहे हैं ना, कि आपने शुरुआत कहाँ से की, डेली वेज वर्कर से जोनल हेड बन जाना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है, आप खुद को
बहुत थैंक गॉड, मतलब रियली मैं कभी भी इमोशनल हो रहा हूँ कि मैं भगवान को ना कितना शुक्र अदा करूँ,
जी,
कि मैं क्या डिजर्व करता था, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया. जोनल हेड की बात नहीं कर रहा, जीवन में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे को कुछ एक्स चाहिए होता है और टू एक्स दे देता है. रियली आई टेल यू,
जी,
मतलब मैं बहुत खुश हूँ. देखो मेहनत ठीक है हो गई मेरे से, लेकिन कुदरत भगवान का भी मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ. और एक मैं संदेश मेरा ये है कि कोशिश करें हम जो है उसमें अपने आप को खुश रखने की, कंटेंटमेंट जिसको बोलते
हैं, जी, जी, जी.
कि जो है उस पर खुश रहने की कोशिश करें, जो नहीं है ठीक है ट्राई करते रहो. मैं कहता हूँ, मैं अपनी बेटी को कहता हूँ, बेटी ठीक है यू मे ट्राई टू अर्न मनी, मैं क्या गलत तरीके का रास्ते का पैसा, उन्होंने मुझे कहा मैं कार गिफ्ट करूंगा, मैं क्या बेटे मुझे कार वार कुछ नहीं चाहिए. मैं क्या मेरे को कभी जिंदगी में तूने कहा ये लो पापा एक्स अमाउंट, और मुझे पता लगा गलत रास्ते का है तो मैं उसमें से एक रुपया नहीं लेने वाला, ना एक रुपये कोई चीज. मैं क्या जीवन में मेरे को गलत रास्ते का पैसा ना हाथ में ला के देने की कोशिश करना, ऐसे मैंने उनको अभी नहीं कहा, अच्छे से समझाया हुआ. मैं कहा हाँ तेरे को रिक्वायरमेंट है जो मैं अपनी कमाई किया या हुआ ये पेंशन, आई एम गिविंग यू ऑल.
जी धवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की हैं, उम्मीद है कि सुनने वाले लोग आपसे आज बहुत कुछ सीख पाएंगे, आपका बहुत बहुत
धन्यवाद. नहीं, मैं टू स्मॉल पर्सन, इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच.